परोसे हर किसी कथा को याद कर लेते तो जब हम इस कथा में पहुँच सकते हैं। तो ये काफ़ी दिन हो गया कि इसका हमारा डिस्कशन हुआ नहीं था, इसके पीछे चीज़ें याद कर लेना। गौराम के मधुर लीला चार करने प्रवे शिला सेजा एक भजन के उसके प्रकाश। तो महापुरुष कथाओं को बार बार सुनेंगे, अगर हम हृदय में सुनेंगे तो हृदय में धारण होगा, तब जाकर हम हमें ब्रजेंद्र नंदन का प्राप्ति होगी, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी। तो सुरेंद्र काली में सगुण भट्टाचार्य जी उनको परोसे, तो महाप्रभु ने कहा देखो ये सब मीठा पाना जो है ये भक्तों को दे दो, उसे भक्तों को दे दो, नित्यानंद जगदानंद मुकुंद इत्यादि को, और वे सन्यासी हूँ मेरे जो लापरा व्यंजन जो है यही दो। तो तभी सगुण भट्टाचार्य ने कहा कि जगन्नाथ जो महापुरुषा ने जगन्नाथ ने क्या क्या खाया आप देखिए, कहकर उनको प्रसाद खिलाए, खिलाकर उनसे अनुमति मांग कर फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी गोपीनाथ आचार्य के साथ जाकर अलग से जाते भोजन किए। तो भोजन के उपरांत आकर भोजन करके गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य जी आकर चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य ने नमो नारायण कहकर उनको प्रणाम किए। जब नमो नारायण प्रणाम किए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण मध्य अस्तु, आपका मति कृष्ण में लगे। तो जैसे शब्द सुना तो सर्व भट्टाचार्य जी लगा तो कोई ये कोई वैष्णव सन्यासी है। तो उसके बाद सर्व भट्टाचार्य जी गोपीनाथ आचार्य से पूछते हैं ये पहले के आश्रम में कौन था सन्यासी, पहले इसे क्या पूर्वाश्रम क्या है। तो गोपीनाथ आचार्य जी कहते हैं कि ये नवदीप में नवदीप का रहने वाला है, इसका पिता का नाम मिश्र पुरंदर है, और ये नवदीप का रहने वाला मिश्र पुरंदर है, इसका नाम विश्वंबर है, और नीलांबर चक्रवर्ती इनकी नाना लगते हैं। तो जैसे ही सर्व भट्टाचार्य नीलांबर चक्रवर्ती का नाम सुने तो उनको याद आ गया कि मेरे पिता विशारद महेश विशारद और नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर दोनों सहपाठी थे। तो इस कारण से चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनको का प्रेम जागृत हो गया। अब जब सुना कि ये नवदीप का रहने वाला तो बहुत प्रसन्न हुआ, चलो नवदीप का भी रहने वाला है, तो बहुत प्रसन्न हुए सर्व भट्टाचार्य जी। तब उनको बहुत खुश होके सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु को कहने लगे आप जो है आप परम पूज्य हैं और सन्यासी भी हैं और हम आपके सेवक हैं, आप सन्यासी हैं तो निश्चित आप जगत पूज्य हैं तो विराट पूज्य हैं और हम आपकी दास हैं। तो जैसे ही सर्व भट्टाचार्य जी देखो ये लोग वृद्ध व्यक्ति थे तो जैसे जैसे सुने तो महाप्रभु ने श्री विष्णु कहके कान पकड़ लिया। तो महाप्रभु ने तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप जगत गुरु हैं और आप सन्यासी हैं, आप कृपा करके सबको वेदांत पढ़ाइए, यहाँ पर रहकर मेरे इस आश्रम में रहकर सबको वेदांत पढ़ाइए। तो एक वेदांत पढ़ाने वाला बहुत नवजुवक भी थे चैतन्य महाप्रभु, दिखने में परम सुंदर सन्यासी थे, कोटि कामदेव के समान सुंदर तो उनकी नवदीप लीला भी था। चैतन्य महाप्रभु की लीला बहुत सुंदर उनका जो रूप था, तप्त कांचन गौरव तप्त कांचन का सुने के समय उनका काम शिव मुंडन किए हुए थे, सुंदर तिलक धारण किए हुए थे, जनो पहने हुए थे जो कि साक्षात अनंत देव जैसे लग रहे थे महाप्रभु, उनके जनो अनंत देव जैसे लग रहा था, महाप्रभु के शरीर में अनंत देव जो है लिपटे हुए थे। तो आप वेदांत पढ़ाइए, जैसे कहा सर्वप्रथम महाप्रभु ने कहा कि मैं अच्छा बुरा कुछ पता नहीं चला, मैं भावुकता से संन्यास ले लिया और मैं आपके ही आश्रय में हूँ। कृपया करके मैं आपकी संगति में जा रहा हूँ, आप मेरा पालन करें। और देख लीजिए आज ही जो है मैं कितने बड़ा विपत्ति में पड़ गया था, आपने मुझे बचाया। दरअसल चैतन्य महाप्रभु अपने वाणी से वो अपनी माया का प्रभाव डाल रहे हैं सारू भट्टाचार्य के ऊपर। तो आपने जो है आरती विपत्ति में पड़ गया था, आपने मुझे बचाया। तो सारू भट्टाचार्य ने कहा ठीक है, तो आप जो है अकेला कभी जगन्नाथ मंदिर मत जाओ, मेरे साथ जाया करो, नहीं तो मेरे शिष्यों के साथ जाया करो, अकेले मत जाओ। चैतन्य महाप्रभु के साथ देखो मैं कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जाऊँगा, मैं गरुड़ के पास ही रहकर मैं दर्शन करूँगा, ईश्वर का दर्शन करूँगा। मुझे मंदिर के अंदर जाने से मुझे कुछ हो जाता है तो मैं जाऊँगा नहीं। तो उसके बाद सर्वो भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को कहा कि आप उनको ले जाइए, भगवान का दर्शन करा के फिर मेरी मौसी के यहाँ उनको रखवा दीजिएगा। मौसी काशी में, इससे पता लगता है कि काशी मिश्र जो है काशी मिश्र मौसा रखते, तो इससे लगता है कि सर्व भट्टाचार्य उनके जो है रिश्ते में आते हैं। तो वहाँ पे उनको दर्शन करा के उनको रहने की व्यवस्था करवा दीजिए, उनको जो भी आवश्यकता है जल पाप वगैरह से व्यवस्था कर लीजिए और उसका पूरा ध्यान रखिए। गोपीनाथ आचार्य को सर्व भट्टाचार्य ने कहा। तो गोपीनाथ आचार्य ने जाकर दर्शन किए, फिर काशी मिश्र की बाड़ी उनके घर में आ गए, उन महापुरुष का रहने की व्यवस्था कर दिए। तो अगले दिन प्रातःकाल गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महापुरुष को लेकर जगन्नाथ जी के मंगला आरती के लिए गए। मंगलारती जाकर देखे, उसके बाद आके उनको गंभीरा में छोड़कर फिर चैतन्य फिर गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद ये दो लोग सार्वभौम भट्टाचार्य के पास आए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि ये जो सन्यासी है पता नहीं इसके प्रति मुझे क्यों इतना प्रेम उमड़ रहा है, इसका क्या नाम है, अब किस संप्रदाय से है। तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा इसका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और ये जो है भारतीय संप्रदाय से संन्यास लिया है, तो भारत भी बड़ा धन्य है जिससे संन्यास लिया, वो गुरु भी बड़ा भाग्यशाली है। ऐसे कैसे कह रहे हो। और दूसरी बात है कि जो भारतीय संप्रदाय ये तो मध्यम कोटि का है और उत्तर कोटि का नहीं है, और उसमें इतना सुंदर नाम तो बड़ा सुंदर है कृष्ण चैतन्य, और इतना सुंदर दिखने में इतना आकर्षक व्यक्ति मध्यम कोटि का है ये ठीक नहीं लगा। तो उस और इतना नौजवान है, 24 साल का उम्र है और ये संन्यास लिया, पता नहीं आपकी संन्यास का रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उसको मैं निरंतर वेदांत सुनाऊंगा और उसके बाद मैं संस्कार के माध्यम से उसको वैराग्य अद्वैत मार्ग में प्रवेश कराऊंगा, संस्कार विधि इत्यादि के द्वारा मैं उसको उत्तम सन्यासी बना दूंगा, मध्यम कोटि से उत्तम कोटि का सन्यासी बना दूंगा। श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलेश्वर संन्यास बनाऊंगा। तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि देखो ये सब जो है कोई आवश्यकता नहीं है, इनको उत्तम कोटि का संन्यास बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो है भगवान है उनको इनको माया कर रहे और अकेले लोग उनको समझ नहीं पा रहे। चैतन्य महाप्रभु को वास्तव में सच बात है कि ये जो हर कोई चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में जानना बहुत कठिन हो जाता है, या ज्यादा से अधिकतर हम उनको भक्त के रूप में जान लेते हैं। तो कोई बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में जाने, अगर किसने जान लिया तो सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रील प्रभुपाद जी कृपा से कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, हम सबको मिला, सारे जगत को मिला। लेकिन फिर भी बहुत लोग वंचित है चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानने से। भगवान बनने की इच्छा है लेकिन सब तरह भगवान बनने की इच्छा है लेकिन भगवान को भगवान मानने की बहुत ही जो है उनकी मंद भाग्य कह सकते। तो गोपीनाथ आचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो है अकेले लोग इनको समझ नहीं पाते कि वास्तव में भगवान है और ये तुम्हारे पर माया कर रहे हैं। तो
होती है, गुरु का संत प्राप्त होता है तो वो इस
तो इससे प्रमाण प्रमाण देने गोपीनाथ आचार्य जी श्री भागवतम के दसम स्कंध में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते कृष्ण से तथा
हजारों लंबी तो जब अनुभव बदाश
নাহলে তোমার ঈশ্বর আর মায়া এই বলিতে ব্যবহার আর পতা রাখতে কি তোমার উপর ঈশ্বর কৃপা নেই কিন্তু ভগবান কি ये अवस्था देखने पास ही अगर तुम भगवान को भगवान के रूप में नहीं जा सकते पा रहे इससे पता लगता है तुम्हारे भगवान की कृपा नहीं है और ये जान लो कि ये तुम्हारे ऊपर माया कर रहे हैं तो इसका एक छोटा तात्पर्य बता रहे कि गोपीनाथ आचार्य यह इंगित करते हैं कि सर्वोम भट्टाचार्य पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भाव और अद्भुत लक्षण देख चुके थे। सर्वोम भट्टाचार्य जी पहले महाप्रभु के शरीर में अद्भुत लक्षण देख चुके थे। प्रेम भाव के यह अद्भुत लक्षण परम पुरुष को सूचित करने वाला महाप्रभु के जो अद्भुत लक्षण है ये महापुरुष एक क्या परम पुरुष का सूचित कर रहा चैतन्य महापुरुष इस प्रकार जो जो उनकी जो अद्भुत लक्षण के शरीर से प्रकट होते थे उस लक्षण के द्वारा ही चैतन्य महाप्रभु ने कितने लोगों भक्त बनाया कौन था जो यहाँ पे काशी में जो प्रकाश की सरस्वती थे ऐसे महाप्रभु को देखने के सब आकर्षित हुए जब चैतन्य महाप्रभु इस विकार में होते थे अष्टसाधक विकार की महाअवस्था अष्टसाधक विकार शुद्ध भक्तों की होती है लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शरीर में अष्ट शक्ति के एक महाविकार वो महाविकल विकास राधारानी में होती है तो वो लक्षण कृष्ण भी प्रकट कर रहे थे गौलीला में कैसे पता लगता है कि ये परम पुरुष है किंतु भट्टाचार्य के सारे लक्षण को देखने के बाद भी भगवान के विजय प्रकृति को नहीं समझ पाया वे भगवान की लीलाओं को भौतिक मान रहे थे ऐसा निश्चित रूप से माया के कारण तो अभी इसको पढ़ते जो प्यार जैसे मैं इतनी फाइल ले रहा था लेकिन लिखा हुआ तो नहीं पढ़ लेते कृष्णा कल्याण को सुनी देखी लेना देखे तारा बही मुख जन सुनी हसी सर्वोचन देखी लेना देखे तारा बही मुख जन सुनी हसी सर्वोचन
Thank you.
अध्याय में बोली बहिरंगा शक्ति के प्रभाव, बहिरंगा शक्ति से प्रभावी व्यक्ति बहिर्मुख जन अर्थात संसारी व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि देखने के बाद भी वो वास्तविक वस्तु को नहीं समझ पाते। गोपीनाथ आचार्य के कथन सुनकर सबको भट्टाचार्य मुस्कुराए और इस प्रकार कहने लगे। तो इसे प्रभुपाद का अच्छा इसने अनुवाद करे कि बहिरंग शक्ति से प्रभावित व्यक्ति बहिर्मुख जन अर्थात संसारी व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि देखने के बाद वो वास्तविक वस्तु को नहीं समझता। जो बहिरंग शक्ति के प्रभाव में व्यक्ति है तो वो भगवान को समझ नहीं पाता। इसी प्रकार गोपीनाथ आचार्य जी अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे कि आप जो ज्ञानी बनते हो, पंडित बनते हो, तो आप बहिरंग शक्ति के प्रभाव में रहते हो। तात्पर्य, जब तक मनुष्यों का हृदय स्वच्छ नहीं होता तब तक वो अपने हृदय में भक्ति की दिव्य प्रकृति को जागृत नहीं कर सकता। जैसे कि भगवान कृष्ण ने भगवद्गीता पुष्टि की है, तेषां अन्तरस्थ पापं जनानन्ति न कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते मां हृदयतः। जिन लोगों ने उस जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, वे मोह के दंश से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ता पूर्वक मेरे सेवा में लग जाते हैं। जब कोई वास्तव में शुद्ध भक्ति में लगा हो तो यह समझा जाता है कि उसे अपने सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्ति मिल चुकी है। दूसरे शब्द में यह समझना चाहिए कि भक्तगण पाप से पहले ही मुक्त हो चुके हैं। पापी व्यक्ति दुष्कृति कभी भक्तिमय सेवा में नहीं लग सकता, ना ही केवल पांडित्य पूर्व तर्क वितर्क से कोई भक्ति में लग सकता है। शुद्ध भक्ति करने के लिए मनुष्य को भगवत कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है। तो यहाँ पे गोपीनाथ आचार्य जी कह रहे कि गोपीनाथ आचार्य से बहुपाल तात्पर्य तात्पर्य इसने यही कह रहे कि किसी पांडित्य पूर्ण से या किसी अगर शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, अन्य किसी ज्ञान के द्वारा चाहे पांडित्य पूर्ण हो तो इसका भगवान को स्तुति हो, पांडित्य पूर्ण हो, शुद्ध भगवान को समझना बहुत कठिन है। तो इस बात से सर्व भट्टाचार्य जी थोड़ा क्रोधित हो गए, थोड़ा क्रोधित हो गए। आप देखो इसे गोपीनाथ आचार्य और सर्व भट्टाचार्य जी थे तो क्या बेमरी और साले थे, तो दोनों में थोड़ा परिहास हो रहा था। तो ये वहाँ पे सर्व भट्टाचार्य कहने लगे यह पुष्टि विचार करी नापल बलोस शास्त्र दृढ़ कही किचु नालोई बलोस। देखो इस बात से कि हम जो बैठ के चर्चा कर रहे इसमें कोई बात करना सर्व भट्टाचार्य कह रहे अपने जीजा गोपीनाथ आचार्य से कह रहे आप क्रोध मत कीजिएगा। शास्त्री कह रहा है कि महाभागवत है चैतन्य गोस्वामी एक कलिकाल विष्णु अवतरण है। चैतन्य महापुरुष महाभागवत है, एक भक्त है, इस कलिजुग में विष्णु का कोई अवतार नहीं होता। तो इसको फिर कह रहे सर्व भट्टाचार्य कह रहे कर्तव्य क्रियुग करी कही विष्णु नाम कलिजुग के अवतार नाम ही शास्त्र ज्ञान। इसीलिए विष्णु को त्रियुग कहा जाता है, त्रियुग कहा जाता है क्योंकि कलिजुग में इनका अवतार नहीं होता, बाकी सत्य द्वापर तृतीया में इनके अवतार होता है। कलिजुग में इनके अवतार नहीं होता इस कारण से त्रियुग कहा जाता है। तो नहीं होता। तो इसने इसका तात्पर्य में रूपात भागवतम का एक श्लोक बता दे और साथ में श्रीधर स्वामी जी इसके ऊपर टीका करते हुए क्या बता दे सुनेंगे। तो इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु त्रियुग कहलाते हैं, भगवान को त्रियुग कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वे तीन युगों में प्रकट होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु छद्म रूप से प्रकट होते हैं। तो कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होते, छद्म रूप में प्रकट होते हैं। इसकी कोशिश भागवतम में किया गया है। ये प्रहलाद महाराज भगवान ऋषिदेव से प्रार्थना करते बताओ कि
भक्तों की
नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि नहीं नहीं होता, जबकि अन्य युगों में भी प्रत्यक्ष जाने जाते, अतः उनका नाम त्रियुग कहा जाता है। तो आप लोग सर्वप्रथम कि आप कह रहे थे भगवान का अवतार नहीं होता, तो शास्त्र कह रहा है कि ये त्रियुग त्रियुग के कहा जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से भगवान प्रकट नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप से छंद रूप से प्रकट होकर भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। असुरों को इस बात अस्त्र शस्त्र से नहीं मारते, भगवान अपने अपने करुणा के द्वारा अपने नाम के द्वारा असुरों की असुरी प्रवृत्ति को समाप्त करते हैं। आप भक्तों का पोषण करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा भक्तों की भक्तों का पोषण करते हैं। तो भगवान प्रेम जी में ये लीलाएं करते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान त्रियुग का भगवान छंद अवतार के रूप